एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
سامعین ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ سب 5:55 ہو چکے ہیں لیجیے سب 555 پہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں -1 ڈگری ٹیمپریچر اینڈ پروانہ کریں سب ٹھیک ٹھاک ہے اور صاحب آپ ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے مگر میں آپ کی ملاقات کراؤں گا تو پھر پتا نہیں کیا سب اٹھ رہے گا یہ تو آپ جس کریں گے رائٹ آپ جس کریں گے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے ڈینٹسٹری آن مسز ساگا صاحب فیملی بریسز کاسمیٹک امپلانٹ ڈینٹسٹری کلوز ٹو یور ہوم 150 یلو ایونس بولیوارڈ ان برامپٹن اینڈ 65 مونٹپیلیئر اسٹریٹ ان برامپٹن اگین دانتوں میں کوئی بھی خرابی ہو تو صاحب پہنچ جائیے آپ کہاں پر ڈینٹسٹری آف مس ساگا میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر نازیہ رحمان کی ڈاکٹر نازیہ رحمان کے پاس آپ اپائنٹمنٹ کے لیے 9058721100 پہ کال کر لیں اوپن مائک کیفے کہتے ہیں کہ پاکستان کا کھانوں کا مزہ چاہیے کیونکہ سارے شیفس وغیرہ ایوری بڈی ہیو کم فرام پاکستان اوپن مائک کیفے آپ کو ملے گا 1310 ڈنڈاس اسٹریٹ ڈنڈاس اینڈ ڈکسی کے کارنر پر اور اس کے علاوہ اگر آپ نے 30 یا اس سے زیادہ لوگوں کی کھانا کرنا ہے تو صاحب آپ کو ملے گا 8 آئٹمس فار 9.99 اوپن مائک کیفے 416-526-6800 ان کا فون نمبر ہے ٹی وی چاہیے اپلائنسز چاہیے تو پرواہ نہ کریں آپ سلطان بھائی کے پاس پہنچ جائیں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کہاں ہے وہ 801 بوویڈ ڈرائیو ویسٹ بوویڈ اینڈ چنکوزی کے کارنر پر آپ کو ملے گا برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنس سلطان بھائی وہاں پر ہوتے ہیں 9054502828 ان کا فون نمبر ہے وداؤٹ اینی ڈیلے چلیے صاحب ڈیلے بھی کیا تو وہ بیٹھی بھی ہے گول لگا کے آنا تو ہے انہوں نے تو کیوں نہیں ابھی سے ہی بلا لیں ان کو شازیہ ملک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام اچھا خود 6 گھنٹے سے سگریٹ پیے جا رہے ہیں گھوما پھرا جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں اور چے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور ہنسا جا رہا ہے اور بدنام مجھے کر رہے ہیں
وہ سارا اچھا موسم مزاج وغیرہ سب لے کے پھر آپ پاس آتے ہیں نا
اچھا لیکن فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے برا وقت بتا کے نہیں آتا اور آپ کے اوپر بڑے دنوں سے برا وقت آیا ہوا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے ہاں دیکھیں آپ
دیکھیں
ہاں آپ کو جیسے سمجھ نہیں آ رہی نا ویسے ہی وہ بےچارا ایک انگلینڈ کا ڈاکٹر ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بےچارا کنفیوز ہو گیا
اچھا
وہ اس کے پاس نا ایک رشین آدمی پہنچ گیا اس نے کہا کہ بھائی واٹ از یور نیم کہتا ہے مسٹر بوریس تو انہوں نے کہا مسٹر بوریس کیا پرابلم ہے اس نے کہا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس نے اپنا چارٹ کھولا انگلینڈ کے ڈاکٹر نے اس نے کہا کہ مسٹر بوریس لک ایٹ اٹ اینڈ ٹیل می واٹ اٹ از یو نو ریٹن رائٹ ان فرنٹ آف یو تو کہتا ہے کہ اٹ از کہتا ہے کین یو ریڈ اٹ کہتا ہے واٹ ڈو یو مین آئی کین ریڈ اٹ آئی کین ناٹ اونلی ریڈ اٹ آئی نو دس پرسن از مائی کزن اس نے کہا نہیں کیوں کیونکہ اس کا جو بورڈ تھا اس میں لکھا ہوا تھا CZWVSTLY سسکوسکی کچھ کر کے ایسے بنتا تھا کہتا آئی کانٹ ایون ریڈ آئی نو دس پرسن از مائی کزن اور بےچارا وہ جڑا معصوم وہ جڑا ڈاکٹر سی یو کے کا وہ پریشان ہو رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی میں اب اس کو کیا کہوں میں تو اس کی آنکھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ لیٹرز میں نے سامنے لکھے تھے اب یہ کہتا ہے یہ لیٹر والا بندہ میرا کزن ہے ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਸ
ਆਹੋ
ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਕਰ
ਜਾਓ ਗਲੇ ਮਿਲੋ
ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਸਜਿਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਵੈਨਸਡੇ, ਤੋ ਫਰਾਈਡੇ ਕੇ ਦਿਨ 4 to 6 ਵੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਕੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਆਪ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਤੇ ਹੈ, 600 ਕੇ ਕਰੀਬ ਤੋ ਉਸਮੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹੋਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਯੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਸਦਕਾ ਯਾ ਜ਼ਕਾਤ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, 4166200178 ਯੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕਹਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਨਾ ਕੱਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਕਹਤੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਤੜਕਾ, ਤੋ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1775 ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਲ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਇਨਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ 6472903773, ਐਂਡ ਜਨਾਬ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਓਨਟੈਰੀਓਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਲਾਲ ਬਫੇ ਵਿਲੇਜ ਟੇਸਟ, ਇਨਕੀ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ ਮੇ ਹੈ 4141 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅਭੀ ਓਕਫਿਲ ਮੇ ਆਈ ਹੈ 2294 ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਆਰਡਰ ਡਾਲਨਾ ਹੈ ਯਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਉਨਕੋ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਨੰਬਰ ਇਨਕਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸਪੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰੇ ਵੋ ਹੈ 9052262294, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਾਈਨ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਜ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਥਾ ਐਲਬਰਟਾ ਸੇ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸਮੇ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਯੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਹਮ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਪਕੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਪੇ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਸਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਯੇ ਇਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾ ਯੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਓਪੀਓਇਡ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਓਪੀਓਇਡਸ ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਫੈਂਟਨੋਲ ਯੇ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਕੇ ਉਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਸ 2016, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪ ਇਨਕਾ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਆਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਨੀਕ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਕੋ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੇ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਯਾਰਾ ਸੈਕਸ, ਉਨ੍ਹੋਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਨਕੋ, ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੋ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੇਤੀ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਕਾ ਯੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਯੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਨਸੇ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਤੇ
ਫੈਡਰਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰੇ
ਉਸਕੋ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੋ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਵੋ ਉਧਰ ਜਾਏਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਬੈਡ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਲੋਕ ਬੋਲੇਂਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਯੇ ਸਟਰੀਟ ਪੇ ਮਿਲਤੀ ਥੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਮਿਲਤੀ ਥੀ, ਅਬ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਪੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਬ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਮ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਕੇ ਉਪਰ ਇਨਕੋ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸਮੇ ਆਪਕੋ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਪੇ ਡਰੱਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਾਜ਼ ਕੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਵੋ ਇਤਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਟਰੀਟ ਪੇ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇ ਤੋ ਹੈ ਹੀ, ਮਗਰ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇ
ਜੀ ਜੀ, ਬੀਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਯੇ ਬੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਅਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਨੇ ਜੀ ਯੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਸੇਫਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੇ ਸੇਫਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਟਰੀਟ ਸੇ ਖਰੀਦਤੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇ ਲੈ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਨੇ, ਤੋ ਆਪ ਬਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇ,
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਰੇ,
ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਰੇ ਤਾਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਜੇਬ ਮੇ ਜਾਏ, ਤੋ ਯੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਹਮ ਇਸਕੋ ਨਹੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹਮਿਲਟਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਰੈਨੋਵਿਕਸ਼ਨਸ वो हमको भी यहाँ पे टोरंटो के अंदर अप्लाई करने की जरूरत है। अच्छा जी, ये काउंसलर्स पहले हम बता दें कौन है। एक तो पॉला फ्लेचर है, माइक कोल है, फ्रांसिस नुजियाटा है और पार्थी कंदेवल है। अच्छा, ये हुआ क्या है हैमिल्टन के अंदर? हैमिल्टन में ये हुआ है कि असल में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि बड़े तंग आए होते हैं टेनेंट से, और वो उनको क्या करते हैं जी, N13 नोटिस दे देते हैं। वो कहते हैं जी कि हमको यहाँ पे रेनोवेशन कराने हैं अपने घर में, आप यहाँ से जाओ। लेकिन जब फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे तो वो कहते हैं जी वो वापस आ सकते हैं टेनेंट्स अपने घर में, लेकिन ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, रेनोवेशन करा के उसको ज्यादा किराए पे दूसरे लोगों को दे देते हैं। एज अ रिजल्ट वो जो लोग होते हैं जो किसी इंतजार में बैठे होते हैं कि अब हम वापस उसी जगह पे चले जाएंगे, वो जा नहीं सकते और रेंट पे जगह जो है उनको मिलती नहीं है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने कहा जी कि हमको भी इस तरह का कुछ करना पड़ेगा, और हमको बल्कि ये रेनोवेशन टेनेंट रीलोकेशन बाय लॉ जो है वो लाना पड़ेगा, ताकि ये इनलीगल एविक्शंस जो हैं इनको रोका जा सके। तो आप हैमिल्टन की तरफ देखें, तो हैमिल्टन में जैसे उन्होंने ये किया है, अप्लाई किया है ये रूल के रेनोवेशंस के बाद लोग वापस, क्योंकि हैमिल्टन ने बहुत मुश्किल बना दिया उसको। इसमें अब क्या होने लगा है, हैमिल्टन के अंदर के जो प्रॉपर्टी जो ओनर है वो सबसे पहले तो रेनोवेशन के लिए अगर बोलेगा तो उसको रेनोवेशन का सिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिटी के लोग आके देखेंगे लाइसेंस देने से पहले कि क्या उस घर को रेनोवेशन की जरूरत है भी के नहीं है, फिर उसको वहां पे उसमें बिल्डिंग के अंदर जो भी चेंजेस है उसके लिए बिल्डिंग एक परमिट देना पड़ेगा। वो सारे पेपर वर्क जो है इंजीनियर के पास जाएगा, इंजीनियर जो है वो एक रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ वाकई ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अनइनहेबिटेबल है और इसको कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन की जरूरत है, फिर वो कर सकते हैं रेनोवेशंस। तो ऐसे ही नहीं कर सकते,
जस्ट टू मेक इट मोर डिफिकल्ट।
हाँ मोर डिफिकल्ट, हाँ जी। लेकिन कभी कभी तो माजिद भाई टेनेंट्स बहुत तंग करते हैं, घुस जाते हैं, वो प्रॉपर्टी भी खराब करते हैं और जो है पैसे भी नहीं देते।
और आजकल देखें, किसी ने अगर 4-5 साल पहले जो रेंट किया हुआ था, वो रेंट्स बढ़ाने के बाद भी इतना नहीं होता कि वो जो ओनर्स हैं वो
अपनी मॉर्गेज तक भी पे कर सकते।
इसलिए दे हैव टू डू समथिंग।
हाँ जी, तो मतलब ओनर्स के लिए कोई लॉ नहीं है और टेनेंट्स के लिए लॉज हैं। भाई ओनर्स के लिए भी साथ ही लॉज बनाओ ना आप जो है। और ये तो अदालतें जो है, अदालतों में आपके पास जो है वो लॉयर्स ही नहीं बैठे हुए हैं। अदालतों में केस जाएगा तो साला साल चलेगा, उसका फायदा फिर से टेनेंट्स को आएगा और लूज करेगा बेचारा जो है होम ओनर जो है कॉन्स्टेंटली लूज करेगा। भारत जी ये आज उन्होंने कहा। ऑन्टारियो के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जी स्टीफन लेचे साहब, वो जरा खुश नहीं है आज। उसकी वजह यह है कि टोरंटो एरिया के कुछ स्कूल बोर्ड्स ने उन्होंने कहा जी कि हम जल्दी क्लासेस खत्म कर देंगे क्योंकि सोलर एक्लिप्स आ रहा है। और बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो देखते हैं सूरज की तरफ जो उनकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप शट डाउन हम करेंगे।
जितना भी मना करेंगे उतना ज्यादा एंजाइटी होगी इसमें।
बिल्कुल एग्जैक्टली। क्वींस पार्क पे आज के रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी जिस वक्त मुझे स्कूल्स ने कहा था कि हम अपना पीटी डे जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं, जैसे कि अप्रैल 19th को था तो उन्होंने कहा जी कि अप्रैल 8th को कर लेते हैं, दैट वॉज ओके। लेकिन पूरे का पूरा स्कूल शट डाउन कर देना और बच्चों को घर भेजना इज नॉट फीजिबल। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है दे आर वर्किंग पेरेंट्स और उनको फिर ऑल्टरनेटिव जो है वो बनाने पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं उनको, यानी कि ऑफिस से छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं, विच इज नॉट रियली। तो मैं इसके लिए बिल्कुल इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि स्कूल्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी और बड़े सेफ्टी के हमें इश्यूज हैं और
इट कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द किड्स।
तो स्टीफन लेचे साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। बच्चों को जो है इनडोर्स रखें, अंदर रखें, उनको एहतियात से रखें पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर आपने जो है जल्दी स्कूल को बंद किया। बीबीसी की जनाब ये रिपोर्ट है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बाइडन साहब जो है, वैसे तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल जो प्राइमरी है वो मिशिगन में जीती है, लेकिन आपको पता ही है कि मिशिगन के अंदर ज्यादातर जो है वो अरब्स हैं, अरब अमेरिकन हैं। ये बड़ी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं बहुत ज्यादा, और ये जो इसराइल की वॉर चल रही है गाजा के ऊपर उससे वो बड़े नाखुश हैं कि बाइडन साहब कुछ भी इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे जब ये अपनी प्राइमरी लड़ने के लिए गए तो वहां पे लोगों ने मिशिगन में कहा कि आप अनसपोर्ट करें, अनकमिट करें अपने आप को, इनको वोट्स ना दें। अलबत्ता जो वोट्स काउंट किए गए हैं उसमें देखा गया है कि 80% ने बाइडन साहब को सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी जो अनकमिटेड वोटर्स थे वो 14.5% थी, विच इज अ वेरी हाई नंबर। इसके साथ साथ ट्रंप साहब जो हैं, जो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के वो हैं नॉमिनी हैं, उन्होंने अपना प्राइमरी मिशिगन में जीता है बाय अ लार्ज नंबर। निकी हेली थी इनके ऑपोजिट में, शी रिमेन्ड एज डिस्टेंट सेकेंड। ट्रंप साहब ने 64% जो है सपोर्ट हासिल की लोगों की, और निकी हेली जो है उसने जस्ट अबाउट 32%। तो ये चीजें जो हैं अब जरा हीट अप हो रही हैं, तो अब देखेंगे कि ये कैसे चलेंगी। इंडिया की और यूएसए की डब्ल्यूटीओ का जो ये एक समिट चल रहा है अबू धाबी में, उसमें काफी इनका लड़ाई झगड़ा रहा। उसमें हुआ ये है कि जो डब्ल्यूटीओ के अंदर यूएस पुश कर रहा है एक सेटलमेंट सिस्टम को, उसकी वजह से इंडिया बड़ा नाखुश है। और वो जो था उसने अपनी ये सारी बात जो है थर्ड डे ऑफ 13th मिनिस्टीरियल मीटिंग जो डब्ल्यूटीओ की हो रही थी उसके ऊपर की। असल में हुआ ये था कि यूएस अंडर ट्रंप साहब उन्होंने 2019 में ये अनाउंस किया था कि ये जो डब्ल्यूटीओ की जो अपील्स कोर्ट है इसके अंदर जो है न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, नहीं होएगा, जो पुराने हैं वही चलते जाएं या कुछ और इसके बारे में देखा जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे जब डिस्प्यूट्स ट्रेड से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड के जब बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं तो फिर वो जो अपील्स कोर्ट उसके अंदर होती है वो उसको रिजोल्व करती है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो यहां पे कैथरीन टाई थी, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि भाई ये जो न्यू डील्स हैं वो हम आगे लेके चल रहे हैं, खासतौर पर फिशरीज, और जो फिशरीज में सब्सिडीज देनी है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो हमने आके लेके जानी है। इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल हम इनके ऊपर किसी चीज पर बात नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये जो आपने सारे का सारा ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है इसको शट डाउन कर दिया है, जब तक आप इसको रिजोल्व नहीं करेंगे। और ये जो है बिल्कुल आपने यूएसए ने स्टैंड स्टिल पे आपने लाके खड़ा कर दिया है। जो टाई साहिबा हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जो है वो गुस्से का इजहार किया, उन्होंने कहा कि बात जो चीज जो है वो चल रही है, कुछ भी स्टैंड स्टिल पे नहीं है, सब कुछ जो है बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। आज अगर आप ट्रेंडिंग देखें फिर से ट्विटर के ऊपर तो आपको पता चलेगा जी कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब हैं उनकी जो ये बात आई थी कि हम कोई भी कदम उठा सकते हैं और हम जो है ग्राउंड पे भेज सकते हैं जो ट्रुप्स हैं यूक्रेन के अंदर रशिया को डिफीट करने के लिए, उसके ऊपर जो है मैक्रों साहब की इस बयान के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर रिएक्शन शो किया है, क्योंकि क्रेमलिन ने कहा था कि अगर नेटो ने ऐसा कुछ किया तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब मैक्रों साहब कहते हैं जी कि इस तरह की कोई बात हम सोच सकते हैं। मीडिया ने जो बात की है स्लोवेक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको से, जो कि यहां पे मौजूद थे इस वक्त मीटिंग में, ये जो यूरोपियन के मिनिस्टर्स की हो रही थी और हेड ऑफ द स्टेट की, उसमें उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन है। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि हम बिल्कुल भी सोल्जर्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन में, कुछ कहती हैं कि हम जो है वो सोच सकते हैं, कुछ कहती हैं कि शायद हम भेज सकते हैं। जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टेंसन, जो कि इनके साथ बैठे हुए थे मैक्रों साहब के साथ, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमने तो इस तरह की बात बिल्कुल कोई नहीं सोची है। जर्मन चांसलर वो भी इनके साथ इस मीटिंग में मौजूद थे ओलाफ शोल्स, उन्होंने भी कहा जी कि वेपन्स तो हम भेज सकते हैं, ऑन ग्राउंड ट्रुप्स ना तो यूरोप से जाएंगे ना तो नेटो से जाएंगे। इसी के साथ साथ इनके साथ नेटो के ऑफिशियल्स भी वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा जी कि नेटो का तो इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि हम ऑन ग्राउंड कॉम्बैट जो है उसके अंदर शामिल हो जाएं। इटालियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा जी हमारा भी कोई इरादा नहीं है, हम भी अपने ट्रुप्स नहीं भेजना चाहते। ऋषि सुनक के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी यूके भी कोई नहीं भेजना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ ऋषि सुनक ने यह जरूर कहा है कि हम जो है यूके के अंदर जो रशिया के एसेट्स हैं उनको फ्रीज और सीज हमको करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने G7 को भी कहा है कि आप जो है इस तरह के कोई कानून लाएं कि जिसमें के रशिया के तमाम एसेट्स को फ्रीज करके और उनका तमाम का तमाम पैसा जो है वो यूक्रेन को दिया जाए। यूके के जो बैंक्स हैं उन्होंने ऋषि सुनक साहब को बड़ी आज वार्निंग दी है, उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह का कोई भी काम किया तो ये विद इन लीगल प्रैक्टिस नहीं होएगा, तो आपको ये लीगैलिटी जो है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब ये न्यूज है और इसके मुताबिक वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स जो हैं ग्रीस के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि बाकी यूरोप के कंट्रीज में भी चल रहे हैं, आपको हम बता ही रहे हैं बहुत दिनों से। आज जितनी भी ट्रेन्स और फेरीज थी बिल्कुल एब्सोल्यूटली स्टैंड स्टिल पे थी, उसकी ये भी वजह है कि एक फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई जा रही है ग्रीस के अंदर, जो एक बहुत ही डेडली रेल क्रैश हुआ था जिसमें कि 57 लोगों की डेथ हो गई थी ऑन February 28, 2023, और उसके अंदर ज्यादातर जो विक्टिम्स थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो कि छुट्टियों के बाद वापस अपनी क्लासों में जा रहे थे, जबकि ये पैसेंजर ट्रेन जो थी कार्गो ट्रेन के साथ टकरा गई थी और इससे ये हुआ था। आज सारे के सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एथेंस जो कि इनका कैपिटल है उसके अंदर डिसरप्टेड रहा, फेरीज जो थी वो पोर्ट्स के साथ ही बंद ही रही, वो चल ही नहीं रही थी, कोई काम वो नहीं कर रही थी। इसके अलावा जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो वेजेस हैं इनको इंक्रीज करने की जरूरत है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा उनका बढ़ गया है मुल्क में भी, वैसे एथेंस में भी, ग्रीस में भी जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे अदरवाइज है, लेकिन जो फ्लाइट्स थी वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रही क्योंकि उससे इस प्रोटेस्ट से कुछ फ्यू डेज बिफोर कोर्ट जो थी उसने कह दिया कि अगर फ्लाइट के जो से रिलेटेड जो लोग हैं यानी कि हवाई जहाज से रिलेटेड जो या एयरपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं अगर उन्होंने वॉकआउट किया तो ये बिल्कुल इलीगल माना जाएगा, लेकिन जो आज तो ये ट्रेन और फेरीज वाले कर रहे थे इससे पहले जो है फार्मर्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट यहां पे ग्रीस में कर रहे हैं और ये जो चीज है अब ये ज्यादा सख्ती पकड़ती जा रही है। अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज एक बहुत ही लंबी चौड़ी खबर है और वो है पाकिस्तान के ऊपर। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ गया था और लोगों का, और लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम, कभी ऐसे हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा कहती थी कि रिगिंग हुई है जिसके खिलाफ आता था फैसला वो हमेशा कहते थे, लेकिन इस वक्त जो है दुनिया में भी लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक जो हमने न्यूज आपके साथ कोई महीना पहले शेयर की थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जो मुशरफ साहब की लॉबिंग फर्म है उसको पीटीआई ने वाशिंगटन के अंदर हायर किया है टू डू लॉबिंग फॉर देम, बट दैट्स नॉट ओनली, वो यूएस के लिए सिर्फ किया है, बट दैट्स नॉट ओनली यूएस कि जिसके के अंदर ये आवाजें उठाई जा रही हैं, बाकी यूरोप जो है उसके अंदर भी उठाई जा रही हैं। आज रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक बहुत सारे अमेरिका में, हम अमेरिका से शुरू करते हैं, बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन यूएस लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से एक बार कहा है कि जो कुछ भी ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है इसके रिजल्ट्स जो हैं आप ना माने और ये बहुत सारी इररेगुलरिटीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर आई हैं। आपको पता ही है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर भी इस वक्त आए हुए हैं और बहुत सारे जो हैं जलसे जुलूस भी निकाल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में जो है ये बाकी की दुनिया जो है वो भी इस पे बात कर ली है। इससे पहले जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन था उन्होंने कहा था जी कि इसके ऊपर ये जो पूरा फ्रॉड है इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल इंटरनेशनल और लोकल जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को नहीं दिया गया। आमिर जरा वो तस्वीर दिखाएं जहां पे के लोग जो हैं सड़कों पे निकले हुए आए हुए हैं पीटीआई के, तो उन्होंने कहा जी कि इनको पीसफुल असेंबली भी नहीं की जाने दी और इनको जो है कुछ भी नहीं, कोई इनकी कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं पीटीआई वालों को करने दी गई और काफी जो है इनको मुश्किलें रही। अमरीका के अंदर हाउस फॉरन अफेयर्स जो कमेटी के चेयरमैन हैं माइकल मैकॉल, उन्होंने और जो रैंकिंग मेंबर हैं ग्रेगरी मीक्स और दूसरे जो बड़े प्रोमिनेंट लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अर्ज किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और कांग्रेस को भी कि ये जो वोटिंग काउंटिंग के अंदर इररेगुलरिटीज थी और ये जो बैलेट में टेम्परिंग की गई है इसका फौरन जो है आप नोटिस लें। इससे पहले आपको बताइए कि हमने ब्रैड शर्मन का आपको बताया था कि उसने कहा था जी कि ये यहां पे जो वोटिंग टेब्यूलेशन हैं वो बिल्कुल गलत हुई हैं, तरीके सही से नहीं हुई और ये बिल्कुल अनवारंटेड जो डिले था रिजल्ट में, तो ये मतलब डिले इन रिजल्ट जो था अनवारंटेड था, बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा, आज कुछ और नई आवाजें जो हैं वो शामिल हो गई है क्योंकि आपको पता ही है कि पीटीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में भी सड़कों पे निकले हुए हैं। कांग्रेस वोमन राशिदा तालिब जो हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानीज जो हैं उनकी जो डेमोक्रेसी है सीरियस रिस्क के ऊपर है और इसमें जो बहुत सारे लीडर्स हैं उनको लड़ने भी नहीं दिया गया, उनका जो था बैलेट जो था उसके साथ इंटरफेरेंस और टेम्परिंग की गई और हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा टैक्स डॉलर्स हैं वो किसी भी ऐसे को ना जाएं जो ये सारी की सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उसको अंडरमाइन करते हैं। कांग्रेस वुमन डीना टिटस जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि ये जो कुछ भी मुझे आया है इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से मिली है वो ये शो करती है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो थे जो कि एक कॉर्नर स्टोन होते हैं किसी डेमोक्रेसी के वो बिल्कुल यहां पर नहीं हुए थे। तो यहां पर जो भी आप ऑफिशियल्स हैं उनको मैं कहती हूं कि जी रूल ऑफ लॉ को आप फॉलो करें और उसके अलावा उन्होंने जो इलेक्शंस के बीच में जो वायलेंस और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जाहिर है खासतौर पे पीटीआई के जो ऑफिशियल थे उनके लिए तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज्यादा कंसर्न शो किया और कंडेम किया है। डेमोक्रेटिक जो कांग्रेस पर्सन है रो खन्ना और इल्हाम उमर उन्होंने भी जो है ये मिलिट्री की जो इंटरफेरेंस है और रिगिंग है रिजल्ट्स में उसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई है। माइकल कुगलमैन जो है डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन इंस्टीट्यूट एट विल्सन सेंटर जो कि आपको पता ही एक थिंक टैंक है यूएसए के अंदर, उसने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन और स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही माइल्ड है, कीपिंग इन व्यू के कितने मैस स्केल के ऊपर रिगिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है। यूएस, यूके, ईयू जो है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है बड़ा ये पोल इनरेगुलरिटीज जो है इसके ऊपर आवाज उठाई है। ईयू ने तो यही ये तक कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दिया गया, और कुछ पॉलिटिशियंस जो थे उनको तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करने दिए गए, उनकी जो फ्रीडम ऑफ असेंबली थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर थी रिस्ट्रिक्शंस, और इंटरनेट एक्सेस जो था वो बिल्कुल नहीं था। आज इसके ऊपर जब जर्नलिस्टों ने पूछा स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर साहब से कि भाई आपका क्या इसके ऊपर सवाल है, आपने एक माइल्ड सी दे दी थी पहले स्टेट डिपार्टमेंट इसने व्हाइट हाउस ने कि जी ये जो है इनको प्रोब एक बिठानी चाहिए और ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने आज मैथ्यू मिलर साहब ने कहा जी कि जो उनकी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन वहां पे पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह से वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल कॉमेंट नहीं करेंगे। जहां कहीं भी आप देखते हैं कि ये कोलिशन पॉलिटिक्स जो होती है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स जहां पे बनती हैं वो कंट्री का अपना इंटरनल मैटर होता है और वो कंट्री खुद अपने आप पे डिसाइड करती है, हम जो है उनके लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो जो है किस तरह से अपने मुल्क को चलाएं। तो मतलब जनाब कहने का मतलब ये है कि अमरीका में अब वॉइसेस काफी लाउड हो गई हैं, यूके के अंदर हो गई हैं और यूरोपियन यूनियन में भी हौले हौले ये आवाजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी? मैं आपको आज ही प्रेडिक्शन कर रही हूं, इस द 28th ऑफ फरवरी, 5 नहीं तो 6 महीने ये गवर्नमेंट चलेगी और उसके बाद इनको जो है इमरान खान से जो है वो दोस्ती बनानी पड़ेगी, इमरान खान को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी इस वक्त दो धड़े बने हुए हैं और वो कॉन्स्टेंटली हाफिज साहब को कह रहे हैं कि सर ये जो आप गेम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुल्क के लिए खतरा है, ये ज्यादा नहीं चलेगी। और हर वो बंदा जो इस वक्त दावा कर रहा है कि जी मुल्क खतरे में और हमको इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है, उनको फिर सोचना चाहिए इसके बारे में। मुजाहिद हुसैन सैयद साहब की जो स्पीच थी सेनेट में जिसमें कि उन्होंने कहा था पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई सारे इकट्ठे मिलकर काम करें, इनको उसी फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा, वरना जो है यूरोप के अंदर अगर और ज्यादा आवाजें बुलंद हो गई, और आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाने में देर नहीं फिर करता, पहले भी इनके ऊपर जो है एफएटीएफ में काफी अरसा इनको रखा गया, और अगर यूएसए ने के जो जो पॉलिटिशियन उन्होंने ये बात ज्यादा छेड़ी तो ये पाकिस्तान के लिए कैन बी बैड न्यूज। ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब। नान एंड कबोब के आपको पता ही है बड़े जबरदस्त खाने होते हैं, हर कोई असल में एंजॉय कर सकता है इनका खाना, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई, क्योंकि बहुत ही माइल्ड किस्म के स्पाइसेस होते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है उनका। तो अगर आपको नान एंड कबोब पे जाना है या वहां पे ऑर्डर डालना है तो एक तो उनकी लोकेशन आप नोट कर लें, 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा, जो कि नई उनकी लोकेशन है, और भी कुछ उनके रेस्टोरेंट्स हैं और इसका नंबर है 9052829797। इसके अलावा जनाब यूनिक साइंस विक्रमजीत जी होते हैं, अगर आपको आपके घर की जैसे मैंने कल भी कहा था बूथी अच्छी करानी है या रोशन करवानी है तो आप विक्रमजीत जी से फोन करें, वो बड़ा ही रोशन किस्म का जो है होम साइन आके लगा के जाते हैं। विक्रमजीत जी का नंबर है 6475274482। ओके जी, आज जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बात कर रहे थे अपनी जो है पार्टी कमेटी जो है उससे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान को हमको निकालना है तो हमको मिलकर काम करना पड़ेगा यूनाइटेड तरीके से, हम जो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं ये जो ऑड्स हैं वी नीड टू टेक द ऑड्स ऑफ। और उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन और पीपीपी की ये जो गवर्नमेंट का कोएलिशन है इसको मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इसको पूरी करने दें। लास्ट वीक आपको पता ही है कि इन दोनों पार्टीज ने आपस में काफी राउंड ऑफ टॉक्स करने के बाद हाथ आपस में फिर जोड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा जी कि जो आने वाले 1.5 से 2 साल हैं वो डिफिकल्ट होंगे लेकिन आप यूनाइटेड रहें और जो है अपोनेंट्स के हाथों में ना खेले, पाकिस्तान जो है बैडली इंजर्ड है इस वक्त, हमें जरूरत है पाकिस्तान की मुश्किलें हल करने के लिए और मैं जो नई गवर्नमेंट कोलिशन आ रही है सेंटर में उसको मैं कहता हूं कि जो मैसेज हैं उनकी तकलीफ को नीचे लेकर आए और जो अपनी करेंसी है उसको स्टेबल करें अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा जी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो मैं बिल्कुल नहीं था चला सकता, बड़ी सूझबूझ और समझदारी से जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है तो इसलिए वो मैं कहता हूं कि इस वक्त बेस्ट चॉइस है फॉर द पीएम सीट। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पार्टी लीडर सरदार अयाज सादिक जो है वो कंटेस्ट करेंगे नेशनल असेंबली के स्पीकर पोस्ट के लिए, उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो बड़ा एरोगेंट है इमरान खान, इसको बड़ी दफा हमने बुलाया कि हमारे साथ आके बैठो, लेकिन उसका बहुत ही अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है तो इसलिए वो हमारे साथ आके नहीं बैठा। फिर उन्होंने कहा जी कि ये बलूचिस्तान और केपी और सिंध और गिलगिल बल्तिस्तान में भी मोटरवेज बनाने की जरूरत है क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आती है। भाईहान मोटरवे जरूर बनाओ पर उसके बीच जरा पैसा समझदारी नाल खर्च करो, ठीक है जी। बस यही कहने और कुछ नहीं कह रही। केपी की असेंबली जो है जी उसने आज अपना मेडन सेशन का ओथ उठाया है उसमें, और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में वो जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो जो थे वो आवाजें निकालते थे। पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने लोटा भी फेंका और एक जूता भी फेंका यहां पे, कहा कि ये सब कुछ फेक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद जो आउटगोइंग स्पीकर मुश्ताक गनी थे उन्होंने बहरहाल जी बड़ी मुश्किलों से ओथ दिया 116 न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को, 111 जो है जिन्होंने के सीटें जीती हैं, 5 रिजर्व सीट्स हैं, और बहुत हैवी जो आज पुलिस की प्रेजेंस थी वो थी क्योंकि एएनपी अवामी नेशनल पार्टी जो थी वो बाहर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। केपी असेंबली जो है उसमें 145 सीट्स हैं, 115 जनरल सीट्स हैं, 30 रिजर्व, 26 फॉर वुमेन, 4 फॉर माइनॉरिटीज। 25 रिजर्व सीट्स जो हैं उनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है क्योंकि इनका केस जो है अभी तक चल रहा है ईसीपी के साथ। 2 जो हैं वो वेकेंट सीट्स हैं क्योंकि वहां पे कैंडिडेट्स की डेथ हो गई थी तो इलेक्शन अब बाद में वहां पे होंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली जो है उसके अंदर भी स्वेयरिंग इन हुई, जमरक खान अचकजई ने 57 न्यूली इलेक्टेड लॉ मेकर्स को ओथ एडमिनिस्टर किया। 51 मेंबर्स जो हैं उन्होंने जो ओथ लिया है वो ज्यादातर हैं पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, बाप और कुछ अदर्स, तो जो एनसारों ने हाथ जोड़े हुए हैं ताकि पीटीआई को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। नेशनल असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट है जी फाइनली उन्होंने कहा जी कि अब जो है इसका इनऑग्यूरल सेशन कल 10 बजे, कल मींस थर्सडे को 10 बजे होएगा। नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने इसका अप्रूवल दिया है अंडर आर्टिकल 91(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट आरिफ अल्फी जो है उन्होंने तो आपको पता ही है कि वापस भेज दिया था ये सारी समरी जो थी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जिस वक्त कहा था कि हम ये जो है इसका मंगवाना चाहते हैं सेशन, तो राजा अशरफ साहब ने बहरहाल जी अब अनाउंस कर दिया कि कल 29 को ये अब बिठाया जाएगा क्योंकि उसकी जो मंजूरी है पीएम से आई है। और प्रेसिडेंट अलवी ने कहा था कि जिस वक्त तक तमाम सीट सबको ना मिल जाए और एक क्लियर पिक्चर ना आ जाए तो नेशनल असेंबली का नहीं करना चाहिए सेशन। पीएमएलएन और पीपीपी ने इसको क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था जी कि प्रेसिडेंट अपने जो पावर्स हैं उसको मिस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो है उन्होंने भी अलवी साहब को कहा कि आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन 21 डेज ऑफ इलेक्शन में जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने की जरूरत है जो कि आपको करना चाहिए। पायान और कड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तुम मान रहे हो, मतलब है जिस वे पीटीआई की गल आती है तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाते हैं तो जिस वे अपनी गल आती है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। वाह जी वाह, क्या माशाला, बुरे फंसेंगे आप लोग, बहुत बुरे फंसेंगे, दुनिया आपको देख रही है, मैं आपको बता रही हूं दुनिया आपको देख रही है, बहुत बुरे फंसेंगे आप। अच्छा जनाब, जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का जो केस है इसके लिए आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बहुत दिनों से प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकड़ साहब उनको बुला रहे थे और उनको कहते थे कि आप आके यहां पे बात करें, और आज तीसरी बार जब इनको बुलाया गया है तो आज ये आए हैं यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान के अंदर एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है और यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं एक न्यू स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो डिसअपियर हुए हैं लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उनको जो है फाइंड आउट किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कियानी जो है उन्होंने इस मौके पर कहा कि आप जो हैं हमें बताएं कि कौन से यहां पे जो आपने कहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो काकड़ साहब ने कहा कि आर्मी और इंस्टीट्यूशन जो है वो तो फाइट कर रही है राइट के लिए, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इस सूबे को अलहदा कराना चाहते हैं और उसकी जो है इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद फिर जो उन्होंने कहा जी कि सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज और काउंटर टेररिज्म एजेंसीज को ही आप ब्लेम देते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं ब्लेम देते हैं जिन्होंने कि एक कोस्टल हाईवे के ऊपर भरी हुई थी बस लोगों से और उस पर आग लगा दी और वो लोग अंदर जल गए, ये वो कौन लोग हैं, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग नहीं थे, तो आपको उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हुए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आवान हैं उन्होंने कहा जी कि हमने 11 लोगों को जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फाइंड कर लिया जो मिसिंग थे, 9 जो हैं करंटली जो काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उसकी कस्टडी में है, 4 जो हैं हमसे ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो हैं अफगानिस्तान में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब लोगों को जो है वो रिकवर भी किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि जी ये जो है सारी वायलेशंस हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत है। सिर्फ हम अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नहीं खींच सकते हैं फॉर दीज एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है और वो हौले हौले सबको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा नोटिस लिया था, क्योंकि ये बहुत सारे बलोच जो औरतें और बच्चे जो थे इस्लामाबाद में आ गए थे और उन्होंने धरना दिया था, और उसके बाद गवर्नमेंट को इन्होंने कहा था केयर टेकर गवर्नमेंट को कि फौरन इस मसले पे आप करें। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था कि एमक्यूएम के जो मुस्तफा कमाल साहब हैं वो एक वीडियो सामने लेकर आए थे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जी पीपीपी जो है वो कह रही है कि एमक्यूएमपी को साइड पे ही रखो, पीएमएलएन को वो कह रहे थे। तो आज जनाब एक और जो है वो वीडियो आ गई है। इसी तरह जो सिंध के गवर्नर हैं एमक्यूएमपी के कामरान टिसोरी, उनकी तरफ से एक और जो है वो भी सामने लेकर आए हैं ऑडियो एक क्लिप, और उन्होंने उसमें सुना जा रहा है कि ये टिसोरी साहब जो हैं उनको पार्टी कह रही है कि भई ये जो शहबाज शरीफ लेड कोलिशन पार्टी है इसका हमें साथ देना चाहिए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, हम पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा थे और पीएमएलएन और पीपीपी उस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, और हमको ये कहा गया था कि आप पीडीएम को सपोर्ट करें। पीडीएम को सपोर्ट करने की वजह से इस वक्त एमक्यूएमपी की इतनी बैड जो है वो परफॉर्मेंस रही है कराची के अंदर, क्योंकि वोटर्स जो थे हमसे बहुत ज्यादा गुस्से हो गए थे और उन लोगों ने हमें जो है वोट्स नहीं दिए हैं। एमक्यूएमपी जो थी उसको 7 सीट्स मिली थी 2018 के इलेक्शन में, हालांकि उस वक्त भी बहुत ज्यादा हर्डल थे, लेकिन वो तमाम का तमाम हमारा वोट बैंक जो है हम खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब 2024 के इलेक्शन में उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा हाँ जी हमको एक ये जो है कोई आईटी मिनिस्ट्री तो दे दी गई है जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और लेकिन ये लोग जो हैं पीपीपी वाले ये तो अपना सिंध में गवर्नर भी अपना जो है वो लगाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी जो है एमक्यूएमपी उसने बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इनका साथ देने की वजह से फेस किए हैं, तो हमको इनका साथ नहीं पीटीआई का साथ ही देना चाहिए था। और उन्होंने कहा जी कि पीपीपी कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रही है पीएमएलएन को कि एमक्यूएमपी को साइडलाइन करो। तो पाया ने तो फिर उन देखो ना स्यापे 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 हैं जी ऐसे है। अच्छा जनाब, इंडिया हेट लैब की आज एक रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान में, और इसके मुताबिक ओवर 2/3 हेट स्पीच इवेंट्स जो इंडिया में होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हुए थे 2023 में, और मोस्टली इंटरेस्टिंगली मोस्टली ये जो हेट स्पीच इवेंट्स थे ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में थे। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने किए हैं 668 इवेंट्स ड्यूरिंग 2023, जिसमें के 453 ऑफ दी 68% जो के बनते हैं जो ये केसेस हुए थे ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुए थे। दिल्ली और 3 यूनियन स्टेट्स जो हैं जो कि अकाउंट करती हैं 45 मोर हेट स्पीच इवेंट्स के, वो तमाम के तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट थे। 37 इवेंट्स जो हैं इसमें से दिल्ली में हुए थे, 118 महाराष्ट्र में, 104 यूपी में, 68 मध्य प्रदेश में। वो कहते हैं जी कि ये तीन स्टेट्स जो हैं ऑल टुगेदर हेट स्पीच इवेंट्स का जो है 43% रिप्रेजेंट करती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल थी मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए उसमें हिंदू परिषद और बजरंग दल थे, और इनके हाईएस्ट नंबर थे, यानी कि जो टोटल केसेस थे उसका 32% जो है वो इन दो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज किया था। आरएसएस जो थी वो दैट वाज बिहाइंड 307 केसेस कंपेयर टू वो जो दो हैं जिन्होंने 216 जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे मुसलमानों के खिलाफ। आरएसएस ने 307 जो कि मेकअप करते हैं 46% ऑफ टोटल हेट क्राइम्स इन इंडिया। 239 ऑफ 668 हेट स्पीचेस जो थी जो कि 36% जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो तमाम की तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट थी। पैन की कहते हो सकते ठीक है बस ठीक है कह रहे तुम और कुछ नहीं कह रहा। अच्छा जी ये और जनाब एक आदमी जिसका नाम है संथान जो कि 55 इयर्स का था, जिसको कि कन्विक्ट किया गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में, लेकिन इसको फिर जो है छोड़ दिया गया था। नवंबर 2022 की जो डेथ हुई थी राजीव गांधी की सॉरी नवंबर 2022 में इसको छोड़ दिया गया था। ये जो इसको जो सजा हुई थी 32 इयर्स की उसके बाद, और इसकी अब डेथ हुई है राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में चेन्नई के अंदर। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि इसको जो है फाइनली जब छोड़ा गया तो इसको कहा जा रहा था कि तुम्हें अब हम श्रीलंका में भेज देंगे, लेकिन इसको जो है कुछ थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुई और इसको एक कैंप में जिसमें रखा हुआ था, तो उस कैंप में वो जो ट्रिचू रपली के अंदर था वहां से इसको हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पर इसकी डेथ हो गई। ये जो बाकी के लोग जिनको कि कन्विक्ट किया गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में, उसमें ये नालिनी श्री हरन अलियास मुरुगुन, रॉबर्ट प्यास, रविचंद्रन और जय कुमार थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका तमिल टाइगर्स के साथ ताल्लुक है। और सनातन को बहरहाल जो है वो कहा गया था कि इसको वापस श्रीलंका में अब भेजा जाएगा क्योंकि 32 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड जो इसने जेल में काटा है। लेकिन पता नहीं अब कैसे, कहते हैं कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता था, कैसे भी इसको जेल में अल्कोहल मिल रही थी उसकी वजह से इसको जो है क्रिप्टोटोनिक जो है सीरियोसिस हो गया था जिससे इसके लिवर खराब हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई। अब जो ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं जी कि ये इनकी जो बॉडी है वो अब भेजेंगे इनकी पोस्टमार्टम के बाद श्रीलंका में और उनकी फैमिली को ये दिया जाएगा। भाईजान देखो जरा 32 ईयर्स इन जेल, श्रीलंका ने कुछ भी नहीं किया इन लोगों को छुड़ाने के लिए। बहरहाल जी, अच्छा जनाब, कांग्रेस जो है वो अब बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर क्योंकि अभी जो राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो एक वाहिद सीट थी यहां पे वो भी बीजेपी ने जो है वो जीत ली है, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा आज कांग्रेस के अंदर खफकी का इजहार किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो है उन्होंने इस मौके पे बात करते हुए कहा जी कि कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि उसके एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटीज कौन से हैं। बीजेपी के हरीश महाजन ने डिफीट किया था, कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट था अभिषेक सिंघवी, उसको हराया था। उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसको देखना पड़ेगा कि कौन लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम कर रहे हैं और कौन कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी के जो वूंड्स हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन ये वूंड्स तो शायद हील कर जाएंगे लेकिन जो मेंटल स्कार्स हैं वो हील नहीं कर सकते हैं। तो लॉयल्टी जो है इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज द ओनली थिंग टू बी इन कांग्रेस। तो पायन क्या कहते हैं आप नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, आप क्या कहते हैं? बेचारे के ऊपर बड़े ही बुरे जो हैं वो दिन आए हुए हैं, है जी। अच्छा जी, अच्छा जनाब, एक खास ड्रामा हुआ पाकिस्तान में। अच्छा ड्रामे तो रोज ही होते हैं लेकिन अब जो है वो ड्रामे हर जगह पे होने लगे हैं। सिंगर हमारी जो है शाजिया मंजूर साहिबा एक लाइव टीवी प्रोग्राम में बैठी थी और उन्होंने थप्पड़ दे मारा कॉमेडियन शहरी नैना का क्योंकि उन्होंने इनके साथ एक जोक किया। ये जो प्रोग्राम था पब्लिक डिमांड उसमें ये दोनों बैठे हुए थे तो शहरी नन्ना जो है उसने कहा जी कि आप जब मेरे से शादी कर लोगी तो मैं आपको हनीमून के लिए मोंटे कार्लो लेके जाऊंगा। तो शाजिया मंजूर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से होगी, उन्होंने कहा ये क्या तुम शादी और हनीमून कर रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, इससे पहले भी तुमने एक दफा इस तरह का भद्दा मजाक मेरे साथ किया था और मैंने उसको प्रैंक समझा था और मैंने उसको कवर अप कर दिया था लेकिन हर दफा तुम ये हनीमून और शादी करोगे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मारपीट इतनी चलती रही और नन्ना साहब कहते रहे मेरा मजाक था लेकिन शाजिया मंजूर ने कहा हर दफा ये मजाक नहीं हो सकता। ये बात इतनी बढ़ गई कि जो होस्ट थे मोहसिन अब्बास साहब वो फिर बीच में आए और उन्होंने जो वो बहुत ज्यादा हिटिंग कर रही थी इसको फिजिकली तो उसको फिर पीछे हटाया और शहरी को भी डांटा और उसको कहा कि भाई तुम स्क्रिप्ट के साथ जो है वो स्टिक किया करो और अपने ये ऑफेंसिव जोक्स जो है मत लेके आया करो। लाइव टीवी शो चल रहा था मजा था जब इसको चपेड़े पड़ी है बेचारे को है। अच्छा यस है। और जनाब शाहिद कपूर, आपको पता ही है कि फिल्म फैमिली से हैं वैसे तो, शाहिद कपूर के वालिद हैं पंकज कपूर, वन ऑफ द वेरी वेरी यू नो अमेजिंग एक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और नीलिमा अजीम उनके ये बेटे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं जिस वक्त बॉलीवुड में आया तो मुझे आउटसाइडर समझा जाता था। आज एक टीवी शो नो फिल्टर नेहा के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है इसमें जो है मुझे बहुत ज्यादा बुलिंग किया गया था और सारी जिंदगी से मुझे बुलिंग किया गया। बेशक मेरे फादर इंडस्ट्री से थे लेकिन मुझे उसका एडवांटेज नहीं मिला, ये सिर्फ एडवांटेज मिलता है स्टार्स सुपरस्टार्स और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके बच्चों को, और ये जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली मेरे हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से मिली, मोस्टली ये जो इनसाइडर्स होते हैं यंग एक्टर्स जो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं और इसीलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो इतना डिटेरियोरेट कर गया है। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं मुंबई में आया, मैं दिल्ली से आया था तो मेरा एक्सेंट डिफरेंट था और मैं बॉलीवुड के किसी कैंप के साथ भी नहीं था तो मुझे बहुत सफर करना पड़ा, मुझे आउटसाइडर समझा जाता था लेकिन अब मैं इस चीज के खिलाफ लड़ूंगा। ठीक है जी, आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सनी देओल, सलमान खान, काजोल, करण जौहर, आमिर खान डॉटर इरा खान, उनके जो हस्बैंड हैं नूपुर शिक्यारे, कोंकणा सेन, कबीर खान, मिनी माथुर, अली अफजल, सियानी गुप्ता, ये सब आज जमा हुए हुए थे क्योंकि आमिर खान और किरण राव की जो फिल्म है लपाटा लेडीज उसकी जो थी आज देखने के लिए उसको आए हुए थे। सारे लोग बड़े स्माइल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ पोज कर रहे थे और लोगों ने आज इन सब की जो है वो बड़ी इनकी तारीफ की, खासतौर पे आमिर और किरण की क्योंकि आपको पता ही है कि इनके बीच में डिवोर्स हो गई है लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक जो है वो चलता रहता है। वेरी गुड, ठीक है जी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟ ਫਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਮੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਥੇ। ਇਸਮੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡੈਰਕ ਗੀ ਹੈ, 26 ਈਅਰਸ ਇਨਕੀ ਏਜ ਹੈ, ਓਡਵਾ ਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਓਮਲੂਪ ਨੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਬਲੈਟ ਕੇ ਜੋ ਫਰਸਟ ਡੇ ਕਾ ਯੇ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਉਸਮੇ ਯੇ ਗਿਰੇ। ਅਬ ਇਨਕਾ ਜੋ ਨਾਨ ਰਿਪਲੇਸ ਲੈਫਟ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੂਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨਕੋ ਲਾਈਟ ਕਨਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀਸੀ ਕੇ ਰਾਇਲੀ ਪਿਕਰੈਲ, ਉਨਕੀ ਤੋ ਖੈਰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੂਟ ਗਈ ਹੈ। ਵੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕ ਰੇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਰੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਗ ਰਹੇ ਥੇ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਵੋ ਗਿਰੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਸਕੈਪੂਲਾ ਵੀ ਟੂਟਾ ਔਰ 3 ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਰਿਬਸ ਆਈ। ਤੋ ਅਬ ਇਨ ਬਿਚਾਰੇ ਲੜਕੋ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। AFP ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡਰਿਊ ਪਾਰਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਭਰੇ ਰਹੇਗੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। 16 ਸਮਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਮੇ ਹੋਏਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਸਟ 28 ਸੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 8, 2 ਵੀਕਸ ਆਫਟਰ ਦ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਭੀ ਤੱਕ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੇ ਸੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਿਕਟਸ ਹਮ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਅਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਵੀ ਭਰੇਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਏਗੇ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇਗੇ, ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੋ ਬਹਰਹਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। PSL ਕਾ ਜੋ ਆਜ ਮੈਚ ਥਾ ਜੀ ਵੋ ਆਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਥਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਕੋ 7 ਵਿਕਟ ਸੇ ਹਰਾਇਆ ਵਿਦ 9 ਬਾਲਸ ਟੂ ਸਪੇਅਰ। ਇਨਕਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਜੋ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸ ਵਿਨ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਆਪਟ ਕੀਆ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਫੀਲਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ 15th ਮੈਚ ਮੇ ਐਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਰਾਚੀ ਮੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਕੋ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਮੇ ਹਰਾਇਆ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ 3 ਮੈਚਸ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹਾਰੇ ਥੇ। ਤੋ ਯੇ ਇਸਕਾ ਮੇਨ ਸਿਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਕੋਲਿਨ ਮੁਨਰੋ ਔਰ ਐਲੈਕਸ ਹੇਲਸ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਪੇਅਰ ਥਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 108 ਰਨਸ ਐਡ ਕੀਏ 69 ਬਾਲਸ ਫਾਰ 1 ਵਿਕਟ, ਔਰ ਹੇਲਸ ਜੋ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਬਣਾਏ ਔਫ 35 ਬਾਲਸ, ਔਰ ਮੁਨਰੋ ਨੇ 82 ਬਣਾਏ ਔਫ 47 ਬਾਲਸ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਚੇਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ 19th ਓਵਰ ਮੇ। ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਤੋ ਟੋਟਲ 165 for 5, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੋਲਰਡ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 76 ਰਨਸ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸਕੋ ਮੀਟ ਕੀਆ। ਐਂਡ ਜਨਾਬ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਬ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਗਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ 2026 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਬ ਵੋ ਯੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਜਪਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਪਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਯੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੋ ਨਗੋਯਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਟਰਨ ਕੀਆ ਜਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋ ਬੂਸਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਇਨ 2028 ਆਫਟਰ 128 ਈਅਰ ਗੈਪ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਹੈਂਗ ਜ਼ਾਓ ਕੇ ਜੋ ਗੇਮਸ ਹੋਏ ਥੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ 2018 ਕੇ ਜੋ ਗੇਮਸ ਜਕਾਰਤਾ ਮੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਪੈਲਮ ਬੈਂਗ ਮੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮੇ ਹੋਏ ਥੇ ਉਸਮੇ ਇਨਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਸਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ 2026 ਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਮੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ,
ਬਿਊਟੀਫੁਲ,
ਖੁਸ਼ ਹੋ,
ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼।
ਹਾਂਜੀ,
ਓਕੇ ਜੀ,
ਹਾਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਆਪ, ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕੀ ਬਾਤ।
ਮੈਂ ਕੀ ਬਤਾਉਂ, ਅਬ ਮੈਂ ਬਸ, ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਔਰ ਹਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ, ਜਬ ਹਮ ਹਾਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਜੀਤਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਤਤੇ ਹੈ ਹਮ। ਵਾਹ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਿਡਲ ਗਰਾਉਂਡ,
ਹਾਂ ਹੈ ਜਸਪਾ ਜਰੂ ਤੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ,
ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ,
ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਬਸ ਹਾਰਤਾ ਰਹਿ।
ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਗਈ,
ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਥਾ 8ਵੀਂ ਗੇਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਮੈਨੇ ਕੋ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਥਾ।
ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਸੇ 62 ਗੈਪ। ਐਨੀਵੇ, ਆਜ ਵੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਰੈਪਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਜ ਹਮ ਉਸਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ।
ਅੱਛਾ,
ਤੋ ਆਜ ਸ਼ਾਮ
ਕੋ ਮਾਰੇਂਗੇ,
ਰੈਪਟਰ ਮਾਰੇਂਗੇ ਵੋ ਡੈਲਸ ਕੋ। 7 o'clock ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ, ਨਾਟ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ,
ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰੇਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸ ਇਟ।
ਅਗਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਜਿਆ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਾ ਆਪਣੇ ਤੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਜ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ
ਇਨਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਚਲ ਇਨਕੋ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਏ ਨਾ, ਤੋ ਮਜਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਾ ਮੁਝੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨਾ। माजद भाई मुझे क्या करेंगे, माजद भाई अगर मेरे ऊपर खड़े भी हो गए तो माजद भाई का कितना चिड़ी जितना तो वेट है, उसने मेरा क्या बिगाड़ना है।
अच्छा
हाँ 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 अगर मैंने माजद भाई पे हाथ रख दिया सिर्फ माजद भाई को ब्रेथलेसनेस हो सकती है।
हाथ ना रखता
ना ना ना
हाँ जी
बिल्कुल
एनीवे ये थी हमारी आज की न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू सो मच,
इंशाल्लाह सी यू टुमारो इंशाल्लाह। एंड अब ले चलता हूं मैं आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद ज़ीशान अहमद, डॉक्टर की बातें होंगी कल इंशाल्लाह ताला, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज,
खुदा हाफिज माशो।
दर्द के काबिल बना दिया तूफान, कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया, ओ साथी तेरे
करी है जो तुम ला तो पजी